من اصطفى بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتنازلنا علما. آخر كلاس میں کیا ہو رہا تھا؟ جی ریحان بھائی بتائیں.
طلحہ
جان کی خوبیاں پڑھ رہے تھے جو کہ ام ابان رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زوجہ محترمہ نے بیان فرمائی تھی. اور کچھ ان خوبیوں میں کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ کسی کو یاد ہے؟ یہ کبھی کبھی بول. वो तो आप उनकी बाकी खूबियां बता रहे हैं जो उन्होंने पहले पढ़ी, जो उनकी बेगम साहिबा ने बताई थी, मैं अबान रज़ी अल्लाह अन ने जो खूबियां बताई थी वो वाली अभी पूछ रहे हैं जो आखिरी क्लास में है ना. अभी आप तो बता चुके हैं, अरे अब्दुल्ला भी बताएंगे. जी, 5 खूबियां थी, 6 खूबियां थी. अच्छा, कौन सी? कोई दूसरे वाले? अब्दुल्ला भाई, बड़े वाले. बहुत शुक्र गुजार थे, अप्रिशिएटिव थे, शुक्र गुजार थे. आपको वो आ रही हैं खूबियाँ? चलिए ठीक है, आपको और चांसेस देते हैं.
अच्छा
हाँ, घर में आते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे और सलाम करते थे. जी मोहम्मद, ये वाली बतानी थी. घर में आके सलाम करते थे और घर से जाते हुए भी सलाम करते थे. जोर से सलाम कर ले तो घर, जो घर में कहीं भी बैठा हुआ है तो उसको आवाज आ जाएगी. अच्छा, और बताइए. सखावत से दे देते दे थे, बीवी को पॉकेट मनी भी देते दे थे और जो जरूरत होती थी उसमें के लिए भी दे देते दे थे. ठीक है. अच्छा, आखिर में डांट किसको पड़ रही थी? ये बता कर कि तो हम आगे आगे क्लास शुरू करते हैं. डांट किसको पड़ रही थी ये बताएंगे आप?
बिना मांगे भी थी।
बिना मांगे भी दे देते दे. वो डांट वाली बात तो आप बताएं, डांट किसको पड़ी थी भाई? आप बताएंगे वैसे. हाँ, बहन वालों को, तो जिन लोगों की बहनें उनको डांट पड़ रही थी ना. हाँ, खास तौर पे बहनों वालों को डांट पड़ रही थी. ठीक है, कि बहनों के साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया करें. छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं ना तो फिर भी छेड़छाड़ ही करते रहते हैं, बस फिर भी उनको तंग करते रहते हैं. ठीक है, और वो दूसरे तरीके से तंग करते हैं. तो भाई बड़े होने के बाद जो होता है ना, फिर वो जरा लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है वो और कम हो जाता है. बचपन में तो रो धो करके मामला खत्म हो जाता है, बड़े होने के बाद क्या होता है कि रोता धोता बंदा नहीं है. जब बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो रोता धोता नहीं है, हर वक्त आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं. लेकिन फिर क्या होता है, दिल खराब होना शुरू हो जाता है. वो आंसू जो है ना वो बाहर गिरने की बजाय क्या होते हैं, किधर गिरते हैं? फिर वो अंदर गिरते हैं. बिल्कुल सही है. ठीक है, फिर वो आंसू अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं. और अंदर गिरने से होता है ना, आंसू के अंदर होता है नमक. कभी आपने आंसुओं को टेस्ट किया है? आंसू में बड़ा नमक होता है और नमक जो होता है ना चीजों को खराब कर देता है. ठीक है, तो फिर वो अंदर गिरते हैं, दिल खराब हो जाते हैं. ठीक है, और इस तरीके से फिर रंजिशें पैदा हो जाती हैं. और जब रंजिशें और ये पैदा हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है? ये बहुत अहम सवाल है ना. क्या? कब तक गलत जवाब देंगे? हाँ, ये सही जवाब दिया. ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है और यही जवाब बनता है. बाकी सारे जवाबों से पहले ये जवाब होना ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है. शैतान को मौका मिल जाता है. ठीक है ना, आप लोगों की क्लास हुई उसके बाद हम अंकल्स के साथ बैठे हुए थे ना, चाय वाय के लिए जो बैठते हैं, तो हमने वहां पे कहा कि एक अंकल एक दफा हमारे पास आए थे ना, अपनी ऐसी वो दीन सीखने के लिए शायद आए होंगे. तो हमने उनको कुछ चीजें वीजें बता दी, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए कुछ. ठीक, हाँ जी ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. वो चले गए. ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद जो है ना वो दोबारा आए हमारे पास, ठीक है। तो इस दफा जब वो आए ना तो कहने लगे कि हजरत मैंने चुड़ैल देखी है। मैंने चुड़ैल देखी है। हमने कहा जी चुड़ैल कैसे देखी आपने? चुड़ैल भी हमने तो सुना था कि नहीं होती है चुड़ैल वुड़ैल टाइप की कोई चीज। नहीं नहीं मैंने वाकई चुड़ैल देखी है, पता है उसके पैर मुड़े हुए थे, उसके पैर भी मुड़े हुए थे। तो हमने जब उनसे बात सुनी हमने कहा भाई इनसे बात नहीं कर जा सकती, ये इज गॉन बियॉन्ड इट, इनसे अब बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जो है ना अब वो देवमालाई, समझते हैं आप लोग, देवमालाई किस्से कहानियों की दुनिया में चले गए हैं, ठीक है। वो बेकार की भूत परीत और जिन तो हकीकत होते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास, कल बताया था कि वो अरबी अंकल में कहने लगे कि नहीं नहीं ये मिनल जन्नति वन्नास है, कुरान मजीद में कहीं जिन का जिक्र नहीं है। अरबी थे लेकिन बेचारे को इतना नहीं पता था कि कुरान मजीद के अंदर जिन का जिक्र है। बहरहाल तो जिन तो होते हैं लेकिन ये भूत परीत परियां चुड़ैलें ये सारी चीजें तो नहीं होती है ना, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग जो है ना वो इतना माफ हो जाता है, वो इतना बिल्कुल आउट हो जाते हैं कि वो फिर चुड़ैलों की इस दुनिया में जिंदा रहना शुरू हो जाते हैं, भूत प्रीत की जिंदगी है ना, उनको भूत प्रीत नजर आते रहते हैं हर बार चुड़ैल। तो ऐसे लोगों के बारे में हम ये कहते हैं कि नहीं यार ये तो दिस इज ये तो इनका तो दिमाग, इनसे अब क्या आप अकल की बात करें ना, इनको आप क्या सिखाएंगे, तो ये तो गुजर गए हैं, समझ रहे हैं इस बात। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती कहें या जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं शो मही किस्मत, ठीक है, हमारी अपनी मुसीबतों की वजह से गुनाहों की वजह से हमने शैतान को भी जो है ना वो कोई भूत परी समझ लिया है, राइट। हमने शैतान को भूत परी समझ लिया है, कोई जो है वो इस किस्म के अनरियलिस्टिक किस्म की चीज समझ ली है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये सोचना शुरू हो गए कि यार अगर मैंने शैतान का जिक्र कर दिया ना तो लोग मुझे जो है ना वो मेंटली डिसेबल्ड समझना शुरू कर देंगे। अगर मैंने शैतान का जिक्र कर दिया कि भाई ये शैतान की वजह से ऐसा काम हुआ है तो लोग मुझे मेंटली डिसेबल्ड, दिमागी तौर पर मफलूज बीमार समझना शुरू कर देंगे। तो शैतान का तो हमने नाम ही नहीं लेना है ना भाई, कहीं लोग हमें ऐसा ना समझना शुरू कर दें, लोग दीन की तरफ कैसे आएंगे? अगर लोग हमें पागल समझना शुरू कर देंगे तो वो दीन की तरफ कैसे आएंगे? तो शैतान का जिक्र ही नहीं करना कोई, ठीक है। तो इस पे हजरत मौलाना यूसुफ लदियानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है कि जब हम इस तरीके से लोगों को दीन की तरफ बुला रहे होते हैं ना तो वो हम दीन की तरफ नहीं बुला रहे होते, हम किसी और चीज की तरफ बुला रहे होते हैं, क्योंकि हमारा दीन जो है ये तो कुरान अजीम शान से मिलता है ना, और कुरान अजीम शान के अंदर तो शैतान शुरू से लेकर के आखिर तक उसका तذکرہ मौजूद है। अब हम लोगों को दीन की तरफ दावत दे रहे हैं बगैर मेंशनिंग द शैतान, देन व्हाट काइंड ऑफ अ दीन आर यू कॉलिंग पीपल टू? व्हाट काइंड ऑफ अ दीन आर यू कॉलिंग पीपल टू? यू आर कॉलिंग पीपल टू योर ओन दीन, नॉट टू अल्लाहस दीन। आप अल्लाह के दीन की तरफ नहीं बुला रहे लोगों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ दावत नहीं दे रहे, आपने अपना कोई दीन ईजाद कर लिया है जिसके अंदर आप शैतान का जिक्र नहीं करना चाहते। तो भाई ऐसी गलती हम नहीं कर सकते कि अपने दीन की तरफ लोगों को दावत देना शुरू करते हैं, नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ और अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को दावत देनी है, और वो ना तो अल्लाह के तस्करे के बगैर पूरा होता है और ना शैतान के तस्करे के बगैर, ना शैतान के तस्करे के बगैर ये दीन पूरा हो सकता, ठीक है। तो हमेशा जवाब में याद रखा करें कि शैतान का तस्करा जो है ना अगर बनता है वहां पर तो जरूर से करें शैतान, शैतान की वजह से ऐसा काम होता है। देखें मूसा अलैहि सलाम और खजर अलैहि सलाम का वाकया तो सबने सुना होगा, ठीक है। तो मूसा अलैहि सलाम हजरत यूशा बिन नून के साथ जो है वो खजर अलैहि सलाम की तलाश में निकले, और रास्ते में फिर क्या हुआ कि वो मछली जो है वो पैक करके लेकर आए थे खाने के लिए, तो मूसा अलैहि सलाम सो गए थे तो मछली जो है ना वो एकदम से निकली, यूशा अलैहि सलाम जागे हुए थे, उन्होंने मछली को देखा वो निकली और एकदम से वो जंप मारी उसने समंदर के अंदर, और समंदर के अंदर भी कैसे कि एक सुरंग बनाते हुए अजीब तरीके से जो है वो समंदर के अंदर चली गई, ठीक है। अब मूसा अलैहि सलाम जब उठे तो यूसुफ अलैहि सलाम भूल गए इस वाकये को, भूल गए ना जैसे हम भूल जाते हैं, वो चलना शुरू हो गए। आगे जाकर के मूसा अलैहि सलाम को भूख लगनी शुरू हुई, उन्होंने कहा भाई कहाँ है वो हमारा नाश्ता, वो लेकर के आओ। तो उस वक्त यूसुफ अलैहि सलाम ने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं भूल गया था, क्या कहा था भाई वफादे कराम, यूसुफ अलैहि सलाम ने क्या कहा था उस वक्त कि मैं भूल गया, बल्कि क्या कहा, वह इंसानी हो शैतान, है ना, मुझे उस वाकये को किसने भुला दिया, शैतान ने भुला दिया। उनको शर्म ना आई इस बात के ऊपर कि मूसा अलैहि सलाम क्या सोचेंगे मेरे बालक, ठीक है, ये तो शैतान की बात कर रहा है। ठीक है, तो शैतान का तो भाई नबी अलैहिस्सलाम ने हर वक्त तस्करा किया, कुरान में अल्लाह ने तस्करा किया, हमारे मशाइख ने तस्करा किया, तो हम क्यों ना करें भाई, मानता है ना माने, कोई हमें बेवकूफ समझे, हमें दीवाना समझे, एनू की नहीं मैनू की, मैनू की कोई मुझे दीवाना समझे, ठीक है। अच्छा तो डांट पड़ रही थी बहन वाले भाइयों को, भी ऐसे हरकतें ना क्या करें वरना शैतान का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, जब शैतान का दरवाजा खुल गया तो फिर शैतान विल एंटर, द स्ट्रेंजर विल कम इन टू आवर हाउस एंड देन दे विल स्टार्ट मेसिंग अप विद आवर वुमेन, जिनको के अल्लाह ताला ने घर वाला बनाया है, घर वाली बनाया है। ठीक है, हजरत अल्लाह खान की, अच्छा अब आगे बस एक दो चीजें रह गई हैं, तो उसमें फिर एक वाकया छोटा सा है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की बताई हुई हदीसों के मुताबिक, तो हजरत जी ने फरमाया कि एक मरतबा हजरत अल्लाह तआला ने से किसी ने कहा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की बहुत सारी अहादीस है, यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने बहुत सारी अहादीस रिवायत करी है, 1000 से ज्यादा नंबर है ना, कई हजारों में नंबर आता है अबू हुरैरा, सबसे ज्यादा हदीस की रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने, तो बाकी सहाबा ने इतनी रिवायत क्यों नहीं करी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपसे सुनने ने फरमाया, अबू हुरैरा ने इतनी ज्यादा क्यों करी, तो अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने वाकई हमसे हमसे ज्यादा अहादीस सुनी। तो पूछा वो कैसे, हालांकि अबू हुरैरा तआला आपको पता होगा शायद आपको याद हो कि बहुत आखिर में आके मुसलमान हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम की वफात से तकरीबन 3 साल पहले अबू हुरैरा तआला आकर के मुसलमान हुए, तो सिर्फ 3 साल का अरसा जो है तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहे, तो इतनी सारी हदीसें उन्होंने कैसे रवायत कर दी। तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि अबू हुरैरा तआला जो है ना वो एक मिस्कीन आदमी थे, ठीक है, यानी कोई बिजनेसमैन नहीं थे, कोई जो है वो ट्रेडर नहीं थे, कोई जो है वो खेती बाड़ी करने वाले जमींदार नहीं थे, मिस्कीन से गरीब से आदमी थे, उनके पास कोई चीज थी ही नहीं, वो हर वक्त अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ लगे रहते, ठीक है, जिस वक्त हम लोग जो है ना वो मार्केट में जाते थे, ट्रेडिंग करते थे या अपने जमीनों का ख्याल रखते थे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह जो है वो हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो इल्म हासिल करने की नीयत के साथ लगे रहते थे, आपस में के साथ ही खाते पीते थे, हम सुबह शाम सिर्फ सुबह और शाम को नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होते थे, फजर की नमाज में हाजिर हो गए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठ गए, फिर उसके बाद अपने काम पे चले जाते थे, अबू हुरैरा वहीं पे बैठे रहते थे, वहीं पे आपसम के साथ, फिर हम लोग शाम को वापस आते थे मगरिब के वक्त इशा के वक्त, अबू हुरैरा सारा दिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही रहते थे, ठीक है, तो लिहाजा जितनी दीन की बातें उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सुनी है उतना कोई दूसरा बंदा नहीं सुन सका। अच्छा कुदरतन बाद में किसी ने अबू हुरैरा तआला से भी यही सवाल किया कि आप तो इतना बाद में जाकर के मुसलमान हुए और आपको तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो इतने कम साल मिले, लेकिन सबसे ज्यादा हदीसें आप रिवायत करते हैं, दूसरे सहाबा जो कि इतने इतने सालों से मुसलमान हुए हुए थे उन्होंने इतनी हदीसें रिवायत नहीं करी, तो अबू हुरैरा तआला उन्होंने भी यही जवाब दिया कि दरअसल बाकी जितने लोग थे ना वो मार्केट चले जाते थे, वो अपने जमीनों पे चले जाते थे, अपने बागात पे चले जाते थे, और मैं तो वहीं पड़ा रहता था नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है, इस वजह से मुझे सबसे ज्यादा हदीसें याद हैं, मुझे सबसे ज्यादा हदीसें मालूम हैं। तो तलहा खान की एक और खूबी इससे हमें नजर आती है कि लोगों ने जो ये सवाल करने वाले थे बाहिर जो है वो अबू हुरैरा रज़ी के ऊपर एक एतराज कर रहे थे ना कि भाई वो कैसे इतनी सारी हदीसें, लेकिन तलहा रज़ी अल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ी की तरफ से उनको डिफेंड किया, ठीक है, उनको डिफेंड किया कि भाई वो कुर्बानी देते थे, वो भी जाकर के जॉब कर सकते थे, वो भी जाकर के जो है वो बाजारों के अंदर ट्रेडिंग कर सकते थे, माल कमा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इल्म हासिल किया, ठीक है, तो बुहरायतान जो है वो उन लोगों में से थे। अच्छा, सुदतन हम सूरह नाम की भी आयात ऐसी उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वला तकदुर तकरो दिल लजीना यदुन रब्बहुम बिल वलादि वल अशी यूरीदुन वजहा। अच्छा, एक और वाक्या हम पढ़ लेते हैं कि हाँ, आखिरी बस उनके शहादत का वाक्य है, इसलिए कि शहादत के ऊपर इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो तलहा हसन की शहादत कैसे हुई थी, ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। कोई थोड़ा सा इसका वाक्य अगर बता सके जनाब।
तो
ठीक है, जंगे जमल का वाक्य हमने हजरत अली रजी अल्लाह के वाक्य के आखिर में पढ़ा था ना, कि उस्मान रजी अल्लाह की शहादत हो गई थी और बहुत सारे बड़े बड़े सहाबा थे जैसे मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उन्होंने उस्मान गनी रजी अल्लाह की शहादत के जो मुजरिम थे उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया था अली रजी अल्लाह तआला से कि उनको पहले गिरफ्तार फिर हम बैत करें। ठीक है, तो अली अतान ने क्या जवाब दिया था कि इतना फितना फैला हुआ है, इतना जो है फसाद फैला हुआ है कि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे उन लोगों को गिरफ्तार करूं। ठीक है, और वार्ता वाकयात इसके हमने पढ़े थे। तो फिर जो है वो इस तरह से बाकायदा जंग भी हो गई थी क्योंकि उन लोगों का जो रूप था वो मक्का मुकरमा से बसरा की तरफ सफर करके पहुंच गया था। तो लोगों ने फिर अली अतान को फरमाया कि भाई वो तो बसरा में जाकर के ना दे आर ग्रुपिंग अप, तो वो तो एक म्यूटिनी हो जाएगी, एक बगावत हो जाएगी, तो आपको चाहिए कि वहां पे जाकर के इस बगावत को रोकें वरना मुसलमानों के आपस में जो है वो बगावत हो जाएगी अंदर ही अंदर से। तो तली अली रतान जो है वो एक बड़ी फौज लेकर के बसरा के शहर में पहुंच गए। लेकिन जब वहां पहुंच गए ना, तो फिर इन लोगों की आपस में दोनों तरफ सहाबत थे, उधर तो उम्महातुल मोमिनीन में से एक थी, इधर जो है वो अली रतान थे अहले बैत में से इतने बड़े प्रोमिनेंट सहाबी। तो अब इनके दरमियान जो है ना वो यानी मुजाकरात शुरू हो गए थे। ठीक है, बातचीत शुरू हो गई थी कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम इस मतलब इस वजह से नहीं आए, लेट्स रिजॉल्व आवर डिफरेंसेस ऑन द टेबल। ठीक है, हम बैठ करके आराम से जो है वो आपस में अपने मसलों को हल कर लेते हैं। ये सब शुरू हो गया, लेकिन दिन खत्म हो गया, रात आ गई, तो रात के वक्त जमाने में तो लाइट वगैरह नहीं होती थी, लोग जा करके नमाज वमाज पढ़ के खाना वाना खा के सो जाते थे। जब ये चीज दुश्मनों को नजर आई जो उनके मुसलमानों के दरमियान, आपको पता है इवन यहूदी भी आकर के शामिल हो गए थे, ऊपर ऊपर से अपने आप को मुसलमान कहते थे लेकिन अंदर से वो यहूदी ही थे, तो ऐसे लोग तो नहीं चाहते थे कि मुसलमान आपस में फिर से इकट्ठे हो जाएं और इस्लाम की ताकत को जो है वो और फरोग मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, लड़ाई तो करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर ना ये तो आपस में मुजाकरात कर रहे हैं तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, नहीं हमने तो ये बर्दाश्त ही नहीं करना, हम तो लड़ाई करवा के छोड़ेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि एक तरफ से जो है ना हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह के लश्कर था, तो वहां से बजाहिर जा करके इधर अटैक कर दिया। ठीक है, या वन ऑफ द अदर, इधर से अटैक कर दिया या उधर से अटैक कर दिया। एक साइड से जब अटैक किया तो अब वो लोग तो रात की तारीकी के अंदर सो रहे थे, उठे, ओहो ये क्या हो गया, उन्होंने अटैक कर दिया। तो ऑब्वियसली लोगों ने समझा कि भाई वो लगता है कि उन्होंने ना हमसे झूठ बोला था या कोई पतहरी करी थी, तो अब तो जाहिर है डिफेंड करना है, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम अपने डिफेंस में जो है वो हथियार ना उठाएं। तो इस तरीके से जंगे जमल जो है ये बहुत ये स्टार्ट हो गई और बहुत इसकी वजह से जो है ना वो नुकसान हुआ। लेकिन इसी जंग के दौरान अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के करीब गए, अपने घोड़े पे बैठे हुए थे, जुबैर अतान के पास गए और जुबैर अतान को वो हदीस मुबारक सुनाई कि जुबैर क्या तुम्हें याद नहीं है वो वक्त कि जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने तुमसे ये कहा था कि एक दिन आएगा जुबैर जब तुम अली के खिलाफ लड़ोगे लेकिन अली उस वक्त हक पर होगा। ठीक है, तो जुबैर अतान को फौरन ये बात याद आ गई, हाँ अब मुझे याद आ गया है। भाई जहन से इंसान के निकल जाता है, बहुत सारी बातें हम कल की बात भूल जाते हैं, हम लोग तो बल्कि चंद घंटों की पहले की बात भी भूल जाते हैं, तो कई साल पुरानी बात तो उस जमाने में भी लोग भूल सकते थे, तो वो भूल गए इस बात को लेकिन याद दिलाने के ऊपर फौरन याद आ गया। तो जुबैर अज़रातान जो है वो फौरन जो है वो रिट्रीट करना शुरू हुए, उन्होंने दूसरे लोगों से भी बात करी, चंद लोगों को उन्होंने समझाया, बात नहीं मानी, बिकॉज वो जो है ना लड़ाई का जोश भी चढ़ा हुआ होता है और आवाज में कान यानी कान में आवाज भी नहीं पड़ रही होती सही तरीके से। कुछ लोगों ने तो बात समझी नहीं, मानी नहीं, लेकिन तल्हा रतन को बात समझ में आ गई। तल्हा रतन भी रिट्रीट करना शुरू हो, ठीक है, वो भी मैदानी जंग से जब निकले ना, तो उस वक्त जो है वो किसी ने एक नाम, ये लिया जाता है किताबों में मौजूद है, हजरत जिनी में उसी का नाम लिखा है, मरवान इब्ने हकम, ठीक है, मरवान इब्ने हकम जो है वो उसका नाम ज्यादा आता है किताबों के अंदर, कि उसने जो है ना वो तीर मारा। अच्छा, मरवान इब्ने हकम जो था ये सहाबी तो नहीं था, ठीक है, ये सहाबी के दर्जे में नहीं आता, लेकिन ये ताबी के दर्जे में या उस जमाने के बहुत बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान था ये, ठीक है, बनू उमैया के खानदान से इसका ताल्लुक था, उस्मान अलगेज़ान वाले खानदान से, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इल्म के अंदर बहुत बहुत ज्यादा इसने इल्म हासिल किया था, ठीक है। तो ये उस वक्त जो है वो अली रतन की साइड पर था, लेकिन इसने जो है तीर का निशाना लगा करके तलहा रतन को मारा, और तलहा रतन को जो तीर लगा तो उससे जो है ना वो उनकी कोई मेजर वेन रप्चर हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून निकलना शुरू हो गया। ये बैठ गए, लोगों ने भी आकर के उनको बचाने की कोशिश करी, इनके खून के ऊपर जो है वो वहां से निकल रहा था उसके ऊपर दबाने की कोशिश करी, दबाते थे तो वो खून बंद हो जाता था, लेकिन जैसे ही हाथ हटाते थे वैसे ही जो है वो खून निकलना शुरू आता था। तलहा तला ने लोगों को कहा कि नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है, अब छोड़ दो, अब कोई फायदा कुछ नहीं हो सकता। तो उसी के अंदर लॉस ऑफ ब्लड इतना ज्यादा हो गया कि तलहा की वहीं पे शहादत हो गई। कुछ लोगों ने मरवान इब्ने हकम के तरफ से भी दलाइल दिए हैं कि नहीं, मरवान इब्ने हकम नहीं था, उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसकी तहरीर हमारे पास अभी मौजूद है भी नहीं। बहरहाल, ये किसी ने तो तीर मारा जिसकी वजह से तलहा की शहादत हो गई। अच्छा, इनका बस आखिरी ये है कि तलहा की जो कब्र बनाई गई ना, तो ये वहीं पे इराक के शहर बसरा के अंदर ही है। बसरा एक दूसरा शहर है जो कि सीरिया में, ये बसरा है जो कि इराक का शहर है, बहुत मेजर शहरों में से आज भी मौजूद है पूरा शहर, तो वहां पे इनकी कब्र है। लेकिन जो इनिशियली इनकी कब्र बनाई गई थी, ये थोड़ी सी ऐसी जहाँ जगह पर थी जो कि नशीबी जगह कहलाती है, यानी जैसे बारिश बारिश होती है ना, तो अब वो पानी ऊपर से नीचे आता है, तो इस जगह पे आकर के पानी खड़ा हो जाता था। तो एक दफा एक शख्स ने, वो वही जमाना था, करीब का ही जमाना था, लेकिन कुछ साल गुजर चुके थे, तो उस वक्त एक शख्स ने 3 दफा ख्वाब में हजरत तलहा को देखा। तो तलहा ने उससे फरमाया कि बारिश का पानी मेरी कब्र के गिर जमा हो जाता है, मुझे यहाँ से निकाल के किसी दूसरी जगह पे दफन करो। तो उस वक्त उनको शहीद हुए हुए कई साल गुजर चुके थे, तो उस आदमी ने यह ख्वाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को आकर के बताया, यानी सहाबा मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौजूद थे, तो इस बंदे ने आकर के उनको बताया। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तलहा की लाश को कब्र से निकाल करके दूसरी जगह पर, तो उस वक्त फिर उनकी लाश को जो है वहां से निकाला गया। तो वो लोग फरमाते हैं कि हमने उनकी लाश को बिल्कुल सही सलामत देखा, हत्ता कि उनकी आंखों में जो कफन बनाते वक्त काफूर लगाया जाता है ना, व्हाइट कलर का पाउडर पाउडर होता है, जिससे कुछ देर के लिए इंसेक्ट्स वगैरह और बैक्टीरिया वगैरह दूर रहते हैं, फिर वो भी खत्म हो जाता है, तो काफूर जो लगाया गया था वो भी उनकी आंखों के अंदर वैसे ही मौजूद था, वो भी खराब नहीं हुआ। तो जी ने इसके ऊपर वही वाला शेर यहाँ पे लिखा कि जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। खुद तो क्या मैले होंगे, उनका कफन भी मैला नहीं होता, ठीक है, यानी जो कपड़ा भी उनके साथ लग जाता है, काफूर, काफूर और कपड़ा क्या है, नबातात जमादात, लेकिन इनके बदन से जब ये चीजें लग जाती है, अल्लाह इनको भी महफूज फरमा देते, इसी को निस्बत कहते हैं, ठीक है, जैसे अभी फरमाते हैं ना कि दो ईंटें एक ही भट्टी के अंदर बनती हैं, लेकिन एक ईंट जो है वो बैतुल खला में लग जाती है, बाथरूम में लग जाती है, और दूसरी ईंट मस्जिद में लग जाती है। तो जो बाथरूम में लगती है, आदाब की क्लास के अंदर आप वो पढ़ ही रहे होंगे कि भाई बाथरूम के अंदर तो बगैर चप्पल के जाना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो नजासत होती है, बड़ा इस्तेमाल होता है कि वहां पे नजासत होगी, चप्पल पहन के जाना है, ठीक है, नंगे पैर जाना ही नहीं है, क्योंकि वो ईंट बाथरूम में लगी हुई, लेकिन दूसरी ईंट मस्जिद में लगी हुई है, वहां पे खाली नंगे पैर जाते नहीं है, बल्कि अपना सर भी उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है ना, अपनी पेशानी उसके ऊपर रख देते हैं। कितनी इज्जत मिल गई उस ईंट को, किस वजह से मिली भाई, एक ही भट्टी से दोनों बनी थी, उसकी नस्बत बाथरूम से हो गई, इसकी नस्बत अल्लाह के घर से, क्या उसकी इज्जत जो है वो आसमानों को पहुंच गई, हालांकि ईंट थी। बातें करने का बहुत मूड हो रहा है बच्चों का, थोड़ी देर बस बस एक नज़म है तलहा खान के बारे में, वो पढ़ के हम आपको छुट्टी दे देंगे। हालांकि आगे तैयारी की भी थी दुबारा खान के बारे में, नज़म बस सुन लें। तो हजरत अंजुम नियाजी जी के मुतालिकीन में से एक शायर हैं, उन्होंने हजरत रजी अल्लाह तआला के बारे में कुछ अशआर लिखे हैं। फरमाते हैं, काश मैं उसकी वफा और जान निसारी देखता, उसकी वफा और जान निसारी देखता, काश मैं उसकी मोहब्बत बेकरारी देखता। जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बेकरार हुए हुए थे, यानी इनको चैन नहीं मिलता था नबी अलैहिस्सलाम को देखे बगैर, नबी अलैहिस्सलाम से मिले बगैर। तो काश मैं उनकी मोहब्बत और बेकरारी देखता, काश मैं जंगे उहद में होता उनके साथ साथ, उस पे छाई थी जो मस्ती मैं वो सारी देखता। क्या मस्ती छाई हुई होगी ना तलहा खान के ऊपर, कि अकेले हैं नबी अलैहिस्सलाम को डिफेंड करने के लिए, एंड ही डिड नॉट केयर आगे से कितने तीर आ रहे हैं, कितने लोग जो है वो हमला कर रहे हैं, अकेले नबी अलैहिस्सलाम को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये मस्ती छाई हुई थी उनके ऊपर ना। तो फरमाते हैं कि उस पे छाई थी जो मस्ती वो सारी देखता, किस तरह उसने बचाया सरवरे कौनैन को, नबी अलैहिस्सलाम को किस तरह उसने बचाया, उसके सीने पर लगे जो जख्म कारी देखता। उनके सीने के ऊपर जो खतरनाक किस्म के जख्म लगे थे तीरों से और तलवारों से, काश के मैं वो देखता। तीर लगने से हथेली किस तरह छलनी हुई, किस तरह हुआ था उस पर जोश तारी देखता। उन्होंने अपने हाथों पे तीर रोके थे तो उनके हाथ बिल्कुल शल हो गए थे तीरों से, ठीक है, लेकिन उन्होंने रोके, उनके ऊपर जोश तारी हुआ हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम को बस बचाना है चाहे कुछ हो जाए। जख्म लगने से बदन पर ताजा फूलों की तरह किस तरह छाती बनी बादे बहारी देखता। उनकी छाती जो है ना, जो सीने जिसके ऊपर उन्होंने तीर रोके थे, वो गोया के बहार की फिजा बन गए थे, बादे बहारी, ठीक है, बिहार बहार का जो मौसम होता है ना उसके अंदर बड़ी अच्छी हवा चलती है, बड़ी आपको अच्छी लगती है, यू फील रियली गुड विद दैट विंड। तो उनका सीना जो है वो गोया के बादे बहारी बन गया था। किस तरह करता मोहब्बत वो नबी से टूटकर, उसकी हमदर्दी में मैं उसकी गम गुसारी देखता, उसकी हमदर्दी देखता, उसकी गम गुसारी देखता, बैठता किस तरह वो महफिले असहाब में, उसका इखलासो मोहब्बत इनके सारी देखता। दूसरे सहाबा के दरमियान बैठते थे इखलास के साथ मोहब्बत के साथ, जैसे उन्होंने हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह उनको कैसे गले लगा करके खुश आमदेद और खुशखबरी दी ना, तो मैं वो सारी चीजें देखता। वो नबी के मैकदे में किस तरह पीता शराब, उसकी शाने मैकशी और वादा खुआरी देखता। यहाँ पे शराब से मुराद वो हराम वाली शराब नहीं है बल्कि मोहब्बत की शराब, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की शराब उसने उन्होंने ऐसे पी हुई थी कि अजीब शान से नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत शराब शराब पी थी उन्होंने, ठीक है। तो उनका वो शराब के पीने को मैं देखता, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की शराब। किस तरह बख्शा खुदा ने उसके चेहरे को वकार, उसकी सूरत किस तरह उसकी निखारी देखता। क्या अल्लाह ताला ने उनको वकार वाला जो है वो चेहरा और स्ट्रक्चर दिया था, कैसी हालत उसकी होती थी नबी के सामने, काश मैं आंखों में नशा उसकी तारी देखता। उनकी आंखों में जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नशा तारी था ना, काट के मैं उन आंखों को देखता, किस तरह आंसू टपकते थे खुदा के खौफ से, कैफियत उस पर ये होती कैसे तारी देखता। उनके ऊपर अल्लाह की खौफ की कैफियत कैसे तारी होती थी, काट के मैं वो देखता, किस तरह उसका हुआ, किस तरह उसका हुआ होगा शहादत से मिला, किस तरह उसका हुआ होगा शहादत से मिला, काश उसको मैं बवक्ते जान निसारी देखता। जब उन्होंने शहादत को ऐसे गले लगा लिया, बस मेरा जाने का वक्त हो गया, नबी अलैहिस्सलाम मुझे पहले ही बता चुके हैं कि मैंने शहीद होना है, वो वक्त आ चुका है, ठीक है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह से शहादत की बशारत उन सहाबा को भी दे दी थी। बहुत पहाड़ के ऊपर ही गालिबन नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे अपने सहाबा के साथ, तो ओहद हिलना शुरू हो गया। आपने फरमाया कि ओहद क्यों हिलते हो, क्या तुम्हारे ऊपर एक सिद्दीक और कई शुहदा नहीं खड़े हुए। एक और भी रिवायत है, कई शुहदा नहीं खड़े हुए। एक तो है ना कि भाई तीन शुहदा खड़े हुए हैं और एक सिद्दीक खड़े हुए हैं, उस वक्त खुलफाए राशिदीन खाली थे, लेकिन एक मौके पर ये दूसरे हजरात भी मौजूद थे, तलहा रतान, जुबैर रतान और हजरत गालबन सात दिन भी वकात से जाता, वो खड़े हुए थे। तो शहादत का मुद्दा इनको पहले ही सुनाया जा चुका था, तो ये तो तैयार थे शहादत के लिए। किस तरह उसका हुआ होगा शहादत से मिलाप, काश उसको मैं बवक्ते जान निसारी देखता, यानी अपनी जान निसार करते हुए अल्लाह की खातिर मैं वो वक्त देखता। किस तरह उसने किया था जिंदगी का सामना, किस तरह उसने हर एक साथ गुजारी देखता। क्या जिंदगी गुजारी होगी उन्होंने, काश कि मैं वो देखता। किस तरह वो बच के निकला नरगए शैतान से, उसकी मैं कारीगरी और होशियारी देखता। शैतान जो है ना वो हर इंसान को नरगे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे ये सहाबा कराम शैतान के नरगे में से बच बचा करके निकल जाते थे होशियारी के साथ, कारीगरी के साथ। काश कि मैं वो देखता। किस तरह रोता था रातों को खुदा के सामने, काश मैं उसकी मुसलसल आहुजारी देखता। अल्लाह के सामने जो रोते थे तहज्जुद में उठ करके, उनकी आहुजारी देखता। किस तरह करता था वो हर एक कदम पर इख्तियार, उसका तकवा और मैं परहेजगारी देखता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सहाबा कराम को ऐसी पाकीज़ा जिंदगियां अता फरमाई थी कि हमारे लिए वो एक मिसाल और नमूना है। अल्लाह ताला हमें उनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और जन्नत में उनके कदमों में जगह नसीब फरमाए। तो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छे अल्फाज हैं वो आपने सुन ही लिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बस क्लास खत्म, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फिर अगले अशर मुबशर साहब हजरत जुबैर हजरत आने के बाद
Recording stopped.